میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ جامعۃ المدینہ فیضان بغداد، کورنگی باب المدینہ کراچی کے طلباء کرام، اساتذہ اور سرپرست صاحبان آج کے اس اجتماع میں یہاں حاضر ہیں۔ حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10-10 بار درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ غالباً 1409 کی بات ہے، امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیاعی دامت برکاتہم العالیہ کے پاؤں میں فریکچر ہو گیا۔ آپ کے ابتدائی دور کے ایک اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ ہم آپ کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے پلاسٹر کرنا چاہا اور آپ کے پاجامے کے پائنچے کو زیادہ اوپر کرنے کو کہا، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ فریکچر یہ پنڈلی میں ہے، اس لیے میں گھٹنے سے اوپر کپڑا نہیں کروں گا، کیونکہ بلا ضرورت ستر کھولنے کی شرعاً اجازت نہیں۔ تو چونکہ گھٹنے سے اوپر کپڑا کیے بغیر پنڈلی پر پلستر کرنا ممکن ہے، تو پھر بلا حاجت ستر کیوں ظاہر کرنے دوں، آخر کار گھٹنے پر سے کپڑا ہٹائے بغیر پلاستر کر دیا گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ امیر اہل سنت کا گناہوں سے بچنے کا جو ذہن ہے، اس کے سبب آپ اس گناہ سے اپنی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے میں حیا، یہ بہت مؤثر ہے۔ اب حیا یوں تو عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ یار یہ بڑا با حیا ہے اور یہ بڑا بے حیا ہے، یہ حیا کہتے کس کو ہیں، حیا کا معنی کیا ہے؟ تو حیا کے معنی ہے عیب لگائے جانے کے خوف سے جھیپنا، اس سے مراد وہ وصف ہے جو ان چیزوں سے روک دے جو اللہ تعالی اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں. یعنی لوگوں سے شرما کر کسی ایسے کام سے رک جانا جو ان کے نزدیک اچھا نہ ہو، یہ مخلوق سے حیا کہلاتا ہے. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ عام لوگوں سے حیا کرنا دنیاوی برائیوں سے بچائے گا. اور جس کی کئی مثالیں امیر اہل سنت دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں جو نا عام طور پر جیسے شراب پینے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، تو کئی ایسے ہیں جو اگر شراب پیتے بھی تو لوگوں سے چھپ کر کرتے ہیں کہ نہیں یار لوگ کیا کہیں گے، لیکن نماز قضا کرنا یہ معیوب نارا بدقسمتی سے، تو دھلے کے ساتھ نماز قضا ہوتی ہے. علماء اور صلحاء سے حیا کرنا یہ دینی برائیوں سے باز رکھے گا، مگر حیا کے اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مخلوق سے شرمانے میں خالق عز و جل کی نافرمانی نہ ہوتی اور نہ کسی کے حقوق کی ادائیگی میں وہ حیا رکاوٹ بن رہی ہو. اللہ تعالی سے حیا یہ ہے کہ اس کی ہیبت و جلال اور اس کے خوف کو دل میں بٹھائے اور ہر اس کام سے بچے کہ جس کام میں اللہ عز و جل کی ناراضی ہو. حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی عظمت و جلال کی تعظیم کے لیے روح کو جھکانا یہ حیا ہے. اور اسی قبیل قسم سے حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی حیا ہے، جیسا کہ وارد ہوا کہ وہ اللہ تعالی سے حیا کی وجہ سے اپنے پروں سے خود کو چھپائے ہوئے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین جامع القرآن رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا بھی اسی قسم کی ہے، جیسا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بند کمرے میں غسل کرتا ہوں اور اللہ عز و جل سے حیا کی وجہ سے سمٹ جاتا ہوں. اور ابن عساکر نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان سے ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے ہیں. یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا، یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا. حضرت عثمان غنی با حیا کے واسطے، حضرت عثمان غنی با حیا کے واسطے، حضرت عثمان غنی با حیا کے واسطے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حیا کی دو قسمیں ہیں. فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حیا کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، لوگوں کے معاملے میں حیا، اور نمبر دو، اللہ عز و جل کے معاملے میں حیا. یعنی لوگوں کے معاملے میں حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنی نظر کو حرام کردہ اشیاء سے بچا، اور اللہ عز و جل کے معاملے میں حیا کرنے سے مراد یہ ہے کہ تو اس کی نعمت کو پہچان اور اس کی نافرمانی کرنے سے حیا کر. تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فطری اور شرعی یہ حیا سے بھی اس کی تقسیم کی گئی. فطری حیا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر جان میں پیدا فرمایا ہے، یہ پیدائشی طور پر ہر شخص میں ہوتی ہے، اور شرعی حیا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی کوتاہیوں پر غور کر کے نادم و شرمندہ ہو، اور اس شرمندگی اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر آئندہ گناہوں سے بچنے اور حیا کرنے کی کوشش کرے۔ جیسا کہ فرمایا گیا، علماء نے فرمایا کہ حیا ایک ایسا خلق ہے جو برے کام چھوڑنے پر ابھارے اور حق دار کے حق میں کمی کرنے سے روکے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہت ہی وسیع موضوع ہے، اور اس ضمن میں امیر علیہ سنت نے بھی ایک بڑا پیارا رسالہ تحریر فرمایا ہے، با حیا نوجوان، اس کا مطالعہ بھی ضروری نہیں کہ اگر شرم و حیا کا پیکر بننا ہے کہ حیا ہے کیا، میں ایک با حیا مسلمان بن جاؤں، کیونکہ اس کے بارے میں احکامات بہت ہیں۔ تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ حیا کبھی فرض واجب ہوتی ہے، جیسے کسی حرام و ناجائز کام سے حیا کرنا، کبھی مستحب جیسے مکروہ تنزیہ سے بچنے میں حیا، اور کبھی مباح یعنی کبھی کرنا نہ کرنا یکساں جیسے کسی مباح شرعی کے کرنے سے حیا۔ تو یہ جو حیا کا جو معاملہ ہے، تو اس میں ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جیسے اب یہاں پر جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام موجود ہیں، تو الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے مدنی ماحول میں یہ حیا کا درس ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے جو یہاں رہتا ہے، جو یہاں پر مقیم جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام ہوتے ہیں، تو سنتوں کو اپنانے کی ترغیب ملتی ہے کہ جناب آپ نے جیسے عموماً دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس دو چادریں ہوتی ہیں، ایک چادر ہم اوڑھتے اور ایک چادر اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، کہ جب کبھی بیٹھنا ہے تو پردے میں پردہ کر کے بیٹھنا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ حیا کا ہی ایک درس ہے۔ اسی طرح رات کو جب سونا ہے تو جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کو باقاعدہ اس کی تربیت دی جاتی ہے کہ آپ کپڑے تو پہنے لیکن ایک چادر کو بطور تہبند باندھ لیا جائے، اور پھر آرام کریں، اور آرام کرتے ایک دوسری چادر اوڑھ لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اور حیا مطلب ظاہر ہوگی، اور اگر یہ نہیں ہے تو ظاہر ہے جو یہاں رہتے نہیں ہیں، گھروں پہ جاتے ہیں تو وہ تو قمیض بھی تو بنیان بھی تو بالکل آدھے ننگے ہو کے گھوم رہے ہوتے ہیں، کون کو شرم و حیا نہیں ہوتی ہے، حالانکہ گھر میں ماں بہنیں بچیاں جوان ہوتی ہیں اور ہمیں اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ تو پتہ ہے کنفرم کہ حیا میں ماحول کا یہ بڑا اثر ہوتا ہے، اور تربیت کا بہت عمل دخل ہے۔ یعنی جو والدین اس وقت سن رہے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے با حیا بنے، تو آپ شروع سے ہی ان کی تربیت کریں کہ اگر چھوٹا سا مدنی منا ہے تو ہم کہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ننگا گھومتا رہے، لیکن اگر اس کو شروع سے ہی اس بات کا درس ملے گا کہ نہیں اس بات میں مجھے احتیاط کرنی ہے، تو وہ آگے چل کر بھی مطلب اس بات کا ہوگا، ورنہ تو عجیب و غریب حال ہے ہمارا کہ یہاں پر تو مطلب وہ گھومنے پھرنے کا ایک رجحان بڑھتا ہے تو بالکل وہ ننگے ہو کر مطلب سمندر کے کنارے دریاؤں پر جا کر نہارے ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ عز و جل یہاں تک مطلب وہ بتایا جاتا ہے کہ جناب وہ گھر کی عورتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں اور وہ بھی جناب نہانے میں اور اس طرح کے معاملات میں، تو بڑا عجیب و غریب دور ہے۔ تو اگر ہم ماحول اچھا بنائیں گے اور خود بھی چاہتے ہیں، اور میں یہاں پر جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ذہن بنائیں، کیونکہ آج اگر اس چیز کا درس لیا جائے گا تو اس کا اثر ہماری زندگی بھر کا مطلب یہ معاملہ رہے گا۔ آج اگر بچپن میں کوئی چیز اپنائی جاتی ہے تو اس کا زندگی بھر اس کا اثر رہتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنے ایک بیان میں ایک واقعہ سنایا کہ ایک ڈاکو پکڑا گیا۔ اب یہ بہت ہی خطرناک ڈاکو تھا، لوٹ مار کے ساتھ ساتھ قتل و غارت گری کا بھی اس نے بازار گرم کر رکھا تھا۔ تو پولیس کے ہتھوں چڑھا، یہاں تک کہ جیل گیا، کیس چلا، یہاں تک کہ اسے سزائے موت ہو گئی۔ اب سزائے موت ہوئی تو جج نے اس سے کہا کہ بتاؤ تمہاری زندگی کی آخری خواہش کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب ظاہر ہے ایک شخص جو پھانسی چڑھ رہا ہو تو یہی تاثر ہوگا کہ اس وقت جو اپنی ماں سے ملے گا تو یہ اپنی ماں سے معافی تلافی کرے گا کہ مجھے ماں مجھے معاف کر دو، اور رونا دھونا ہوگا۔ اس بنیاد پر ماں کو بلایا گیا اور اس کو ماں کے قریب کیا گیا، لیکن جیسے ہی ماں قریب آئی उसने अपनी मां को पकड़ा और उसको नोचने लगा, यहां तक कि दांत से काट काट कर उसके कान को चेहरे को लहूलुहान कर दिया। बड़ी मुश्किलों से लोगों ने उसको छुड़ाया और कहा कि बदबख्त, जिंदगी तो तूने इतनी कत्लो गारत गरी में बर्बाद की, अब दुनिया से जाते जाते भी अपनी मां को तूने इतना जख्मी किया, इतना तूने दिल आजारी किए। तो वो डाकू कहने लगा कि आज जो मैं कत्लो गारत गरी में मुब्तला हुआ, मैं जो डाका जनी करता रहा, इस काम में इस मेरी मां का बहुत बड़ा किरदार है। कि एक मर्तबा बचपन में मैं अपने स्कूल से किसी अपने साथी की पेंसिल चुरा कर लाया, आकर मैंने अपनी मां को बताया, मेरी मां ने उस बात की मेरी कोई नोटिस नहीं लिया बल्कि मेरी हौसला अफजाई की, यहां तक कि मैं चोरियां करते करते डाकू बना, डाका डालते डालते कत्लो गारत हुई, मेरा दिल खुल गया और आज मैं फांसी के फंदे पर चढ़ रहा हूं। यहां जो तलबा इकराम मौजूद हैं, चाहे मदनी चैनल के नाजरीन सुनो या सरपरस बैठे, हम सब गौर करें, एहसास करें कि अगर हम चाहते कि हमारी औलाद बाहया बने, हम चाहते हैं कि हमारा माशरा एक सुन्नतों भरा माशरा हो जाए, तो क्या उसमें हमको कोई किरदार अदा नहीं करना पड़ेगा? हमें शर्म हया का खुद पैकर नहीं बनना पड़ेगा? हमें इस बात का एहसास नहीं करना पड़ेगा कि कौन सी चीज कब कहां दिखानी है? आज देखें, घर का माहौल जब खराब होता है, बेहूदा किस्म के ड्रामे, बेहूदा किस्म के फिल्में, गाने, ये मतलब वीडियो पर दिखाए जाते, कराए जाते, नतीजा क्या होता है? नतीजा यही होता है कि घर में मौजूद चाहे वो जवान लड़के हों, जवान लड़कियां हों, सबके अखलाकी मामला जो वो बहुत खराब हो जाते हैं। तो बहरहाल मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लाम में हया को बहुत अहमियत दी गई है। चुनाचे हदीस शरीफ में है, बेशक हर दीन में खुल्क है और इस्लाम का खुल्क हया है। यानी हर उम्मत की कोई ना कोई खास खसलत होती है जो दीगर खसलतों पर गालिब होती है, और इस्लाम की वो खसलत हया है। इसलिए कि हया एक ऐसा खुल्क है जो अखलाकी अच्छाइयों की तकमील, ईमान की मजबूती का बाइस और इसकी अलामात में से है। चुनाचे हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अनु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हया के 70 से ज़ायद शोबे यानी अलामात हैं और हया ईमान का एक शोबा है। एक और हदीस में है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हया ईमान से है, यानी जिस तरह ईमान मोमिन को कुफ्र के इर्तिकाब से रोकता है, इसी तरह हया बाहया को नाफरमानियों से बचाती है। यानी कि एहसास अगर हो कि जिस रब अज़्ज़ा वजल का मैं बंदा हूं, जिस पर मैं ईमान लाया हूं, वो रब अज़्ज़ा वजल मुझे देख रहा है, जब ये तासुर इंसान के दिल में कायम हो जाता है, जब उसका ये जहन बन जाता है, वो चाहे लोगों के सामने हो या लोगों के अकेले में हो, छुप कर हो, वो गुनाहों से बचता है। इस बात का एहसास पैदा हो जाता है ना कि अल्लाह देख रहा है। यानी कि मखलूक के सामने तो हम उमूमन गुनाहों से बचते कि नहीं जनाब मेरी दाढ़ी है, मेरा इमामा है, या मुझे लोग तो बड़ा नेक तसव्वुर करते, मैं इनके सामने कैसे बेहयाई की बातें करूंगा, मैं इनके सामने तो बड़ा नेक और परहेजगार नजर आ रहा हूं, अकेले में क्या तासुर होता है। तो जब अल्लाह से हया होगी और ये तसव्वुर कायम होगा कि मेरा रब अज़्ज़ा वजल मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, क्या सुन रहा हूं, रब अज़्ज़ा वजल देख रहा है, जब ये तासुर कायम होगा तो बंदा गुनाहों से बच जाएगा। और यूं एक और रिवायत में है, हजरत सीना इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अनुमा रिवायत करते हैं कि बेशक हया और ईमान दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो जब एक उठ जाए तो दूसरा भी उठा लिया जाता है। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहां पर मैं सरपरस्तों को जरूर अर्ज करूंगा कि और कि जो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होते हैं, तो चूंकि ये सुन्नतों का प्यारा प्यारा मदनी माहौल है, इसमें हया का दर्स मिलता है, उठने बैठने में, चलने में, बोलने में, अल्लाह की रहमत है। यह अमीर अहले सुन्नत का एक फैजान है कि अमीर अहले सुन्नत ने अपनी बयानात के जरिए, अपनी तहरीरों के जरिए, अपने अंदाज में एक आला किस्म की तरबियत का एक सिलसिला चलाया, और आज जो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होते हैं उनको मदनी इनामात का रिसाला पेश किया जाता है कि अगर आप बा हया बनना चाहते हैं, अगर आप नेक और अच्छे और बा किरदार मुसलमान बनना चाहते हैं, ये मदनी इनामात का रिसाला लीजिए, इसके मुताबिक अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आप अपनी जिंदगी में एक बेहतरीन मदनी इंकलाब बर्पा करेंगे। तो अब यहां पर मैं वालिदैन से अर्ज करूंगा, सरपरस्तों से अर्ज करूंगा कि अगर आपका मदनी मुन्ना, आपका शहजादा दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हुआ, अब उसने जनाब घर में फिल्में ड्रामे देखने छोड़ दिए, अगर वो नजरें झुकाकर और चलने की एक अंदाज इख्तियार करता है, अगर वो बोलने में इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जिक्र भी करता है, यानी उसके बोलने में फर्क आया, उसके चलने में फर्क आया, उसके देखने में फर्क आया, उसके सोने में फर्क आया, उसके खाने में फर्क आया, तो अब अगर ये अंदाज वो इख्तियार करता है क्यों ना उसकी हौसला अफजाई की जाए। हैं क्या हमारे माशरे में तो ना, जैसे अगर कोई पानी पीता है तो वो इस बात को बचाकर छोड़ता है कि यार पूरा क्या पिए, यार लोग क्या कहेंगे। जैसे बोतल अगर किसी को पेश की जाए तो उमूमन हमारे यहां रिवाज है कि बोतल थोड़ी सी छोड़ दी जाए, वरना लोग कहेंगे देखो यार ये तो भूखा है। चाय पीते हैं तो चाय थोड़ी बचाई जाए, खाना खाया जाए तो खाना थोड़ा छोड़ा जाए, जबकि सुन्नत ये कि प्लेट को साफ किया जाए, ज़ई नसीब धोकर पिया जाए, कि किसी कतरे को जाया क्यों किया जाए, अल्लाह की नेमत है। अगर ये दर्स हासिल करके आपका मदनी मुन्ना चाय का प्याला साफ करता है, पीता है उसको, अगर आपका बेटा जो है वो पानी की मतलब खाना खाने के बाद प्लेट को धोकर पीता है, तो ये तो अल्लाह के खौफ से करता है कि नेमतों का शुक्र करना है, कहीं ये नेमतें जाया की तो मुझे कहीं कयामत के दिन हिसाब देना पड़े, तो इस मौके पर बाज औकात हौसला शिकनी की जाती है। ये क्या लगा रखा है, ये क्या करो, आओ थोड़ी देर बैठो। इस तरह के बहुत से ऐसे वाकयात हैं कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हुए, शर्म हया के पैकर बने, लेकिन फिर घर का माहौल, फिर दोस्तों की जो बातें हैं, जो रिश्तेदारों के ताने हैं, उन चीजों ने आज बहुत सो को इस मदनी माहौल से दूर कर दिया। तो आप ऐसा ना कीजिए कि हजरत सैयदना इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अनुमा रिवायत करते हैं कि सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी को मुलाहिदा फरमाया जो अपने भाई को शर्म और हया के मुतालिक नसीहत कर रहे थे, यानी कसरत हया से मना कर रहे थे, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसे छोड़ दो, बेशक हया ईमान से है। तो मालूम हुआ कि हया जितनी ज्यादा अच्छी होगी, जितनी ज्यादा होगी इतनी ही अच्छी है। जो हया कमजोरी और एहसास कमतरी की वजह से ना हो बल्कि खौफ खुदा से हो। तो यहां तलबा किराम को मैं अर्ज करूंगा कि अगर आपके नाज़िम साहब, आपके असातिज़ाए किराम आपको अगर ये दर्स देते हैं कि सोने में किस तरह से हमें एहतियात करनी चाहिए ताकि हमारी बेपर्दगी ना हो, आप अमल करके देखें। हो सकता है कुछ दिनों के लिए घर में कोई ऐसा मजाक उड़ाया जाए, लेकिन आप खुद तस्वुर करें कि जब ये चादरें कोई नहीं ओढ़ता या इस तरह पर्दे का ख्याल नहीं करता तो सोते में कितने बेहयाई के मतलब वो मामला होते, सोने में ज़रा एहतियात ही नहीं होती है। तो हमें हया इख्तियार करनी है कि हया में खैर ही खैर है। हजरत सैयदना इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अनु से मरवी है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हया सिर्फ खैर यानी भलाई ही लाती है। और फिर जो हया ना हो ना मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, तो फिर ना तुम में जिसमें हया नहीं वो जो चाहे करे। तो बेहयाई के जो मामलात है, अगर बाद औकात ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं जो जाहिर अब मौका नहीं है, वरना ऐसे खानदानों में शादियों में ऐसा मतलब माहौल बनाया जाता है जैसे कहा जाता है कि गैरत जो ना गैरत ये रुखसत हो जाती है। जैसे अगर कोई शख्स दरवाजा खोलकर उसको घर के बाहरी दरवाजे पर ऐसा माहौल नजर आए कि कोई लड़का और एक लड़की कोई खड़े होकर कोई ऐसा मतलब अंदाज इख्तियार कर रहे हैं कि जो अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? क्या तुझे शर्म नहीं आती हैं? मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने तुम ऐसा अंदाज इख्तियार करो, शर्म नहीं आती? लड़ाई झगड़े होते हैं। अब ये तो हमारा अंदाज है, लेकिन इसी घर के अंदर 16 इंच, 20 इंच, 32 इंच, 48 इंच की स्क्रीन पर क्या चल रहा है? ये गैरत वहां कहां जाती है? वहां हमारी आंखें शर्म से क्यों नहीं झुकती कि जो मंजर अगर मेरे घर के बाहरी दरवाजे पर अगर कोई ऐसा नजर आए तो मैं आग बगोला हो जाता हूं, मारने मरने पर तैयार हो जाता हूं। जबकि उसी, बल्कि उससे भी ज्यादा बेहुदा मनाजिर हमारे घर की स्क्रीन पर चल रहे होते हैं। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस शर्मो हया ना होने ने आज हमारे मुआशरे को तबाही के इंतहाई अमीक घड़े में गिरा चुका है, गिरा चुका। ऐसे बहुत से वाकयात के जो इस शर्मो हया ना होने के सबब आज मुआशरे में पैदा हो रहे हैं। तो एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका ये हमारे लिए मशरे राह हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम अक्सर निगाहें नीची रखते थे, हस्बे जरूरत देखना साबित है, इसमें शक कोई शक नहीं कि बिला जरूरत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरफ भी ना देखते। जब राह चलते नीची निगाहें किए, रास्ते के एक किनारे पे चलते, हत्ता के शाखे झाड़ियां बेताबाना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने अतहर से लिपट जाती, यानी नजर शरीफ इतनी नीची होती कि झाड़ियों में बादों का दामन शरीफ अटक जाता था। और फिर जब ये पाक अलैहिस्सलाम की शर्म हया, सुभान अल्लाह, मुखातिब के चेहरे पर नजर गाड़ना ये सुन्नत नहीं, ये भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल शर्म हया का एक अंदाज था। ऐसी हया थी कि सरकार अलैहिस्सलाम जिससे गुफ्तगू फरमाते चेहरे के पर निगाहें नहीं गाड़ते थे। और आज दावत इस्लामी के मदनी माहौल में हमको इस बात की भी तरबियत दी जाती, कोशिश तो की जाए, कोशिश तो की जाए कि हम अगर किसी से बात करें तो हमारा, हमारी नजरें उसके चेहरे पर ना जाएं, आंखें झुकाकर बात करें, इंशाल्लाह इसकी बरकतें मिल जाएंगी। फिर इसमें बाद औकात वसवसा आता है, यार मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। तो अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि दिल में ठान लीजिए कि अगरचे ये सुन्नत मुझे मुश्किल महसूस हो रही है, इंशाअल्लाह इस पर मैं ज्यादा सख्ती से अमल करूंगा। कि हदीसे पाक में है, इबादतों में अफजल इबादत वो है जो ज्यादा मुश्किल हो, जो अमल जितना दुश्वार होता है उसकी उतनी ही फजीलत भी ज्यादा है। सैयदना इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल भी मिलता है कि दुनिया में जो अमल जितना दुश्वार होगा बरोज़े कियामत नेकियों के पलड़े में उतना ही वजनदार होगा। तो नियत कर लेंगे इंशाअल्लाह निगाहें नीची रखने की आदत बनाएंगे, क्योंकि जाहिर है कि इस आंख को बचाना बहुत जरूरी है। शर्म हया हासिल करने में आंखों की हिफाजत बहुत ही जरूरी है। सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका एक कॉल है कि पहले आंख बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर इसके बाद सितर बहकता है। आंख ही का रास्ता बंद कर दिया जाए कि दिल और सितर के बहकने की नौबत ना आए। तो कोशिश कीजिए, एक बार कीजिए, दो बार कीजिए, लगे रहिए, क्योंकि जिसने अपनी आंखों की हिफाजत ना की, मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वो इंतहाई खसारे में होगा। सैयदना जरीर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं कि मैंने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अचानक नजर पड़ जाने के मुतालिक दरियाफ किया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपनी निगाहें फेर लो, यहां पर वो दर्स हासिल करें कि जो माज अल्लाह अपने मोबाइल फोन में, अपने पॉकेट्स में ऐसी तस्वीर रखते हैं, ऐसे मनाजिर अगर उनको नजर आते हैं तो दूसरों को कोनियां मार मार के दिखाते कि देखो ये, माज अल्लाह ये बहुत बड़ी जुर्रत है। क्योंकि जाहिर है आज हम अपनी कमजोरी पर गौर करें, हम कितने कमजोर हैं कि मामूली सी आंख में कोई तिनका डल जाए, कोई छोटा सा जर्रा डल जाए या धुआं ही होता है तो हमारी आंखें बेचैन हो जाती हैं। तो जो अपनी आंखों को हराम से नहीं बचाएगा उसके बारे में हदीस पाक सुनिए। सरकारे मदीना मुनव्वरा सरदारे मक्का मुकर्रमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात अलीयुल मुर्तजा शेरे खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से फरमाया, एक नजर के बाद दूसरी नजर ना करो, यानी अगर अचानक बिला कस किसी औरत पर नजर पड़ी तो फौरन नजर हटा ले, दोबारा नजर ना करे, कि पहली नजर जायज है, दूसरी नजर जायज नहीं। और जिसने अपनी नजर की हिफाजत की उसको क्या बरकतें मिलेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो मुसलमान किसी औरत की खूबियों की तरफ पहली बार नजर करे यानी बिला कस्द फिर अपनी आंख नीची कर ले, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे ऐसी इबादत अता फरमाएगा जिसकी वो लज्जत पाएगा। ऐ काश, ऐ काश हम अपनी आंखों की हिफाजत करने में कामयाब हो जाएं, हम पे करे शर्म हया बन जाएं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हदीस कुदसी है, नजर इबलीस के तीरों में से एक जहर में बुझा हुआ तीर है, बस जो शख्स मेरे खौफ से इसे तर्क कर दे तो मैं उसे ऐसा ईमान अता करूंगा जिसकी मिठास वो अपने दिल में पाएगा। तो अगर हमने अपनी नजर की हिफाजत ना की, अपनी आंखों को हराम देखने से ना बचाया, इसका अदा बर्दाश्त ना होगा। हुज्जतुल इस्लाम सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जो कोई अपनी आंखों को नजर हराम से पुर करेगा कयामत के रोज उसकी आंखों में आग भर दी जाएगी। हजरत अल्लामा अबुल फरज अब्दुल रहमान बिन जौसी रहमतुल्लाहि ताला ने नकल करते हैं, औरत के महासिन यानी हुस्न जमाल को देखना इबलीस के जहर में बुझे हुए तीरों में से एक तीर है, जिसने ना महरम से आंख की हिफाजत ना की उसकी आंख में बरोज कियामत आग की सलाई फेरी जाएगी। सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जो आदमी अपनी आंख को बंद करने पर कादिर नहीं होता वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर सकता। सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबी जिना वाली सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया, अपनी नजर की हिफाजत करो, ये दिल में शहवत का बीज बोती है, फितने के लिए यही काफी है। सैयदना यहया अला नबी जिना वाली सलातो सलाम ने से पूछा गया कि जिना की इब्तिदा कैसे होती है, आप अली सलाम ने फरमाया, देखने और ख्वाहिश करने से। ऐ काश हमें आंखों का कुफले मदीना नसीब हो जाए। एक नौजवान किसी बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज की कि हुजूर आप कहते हैं नजर की हिफाजत करो, नजर की हिफाजत करो, मुझसे नजर की हिफाजत नहीं होती, बाजार जाता हूं तो आपके पास बैठता हूं तो आप यही दर्ज देते हैं कि नजर की हिफाजत करो, लेकिन जब मैं बाहर निकलता हूं, जब बाजार में जाता हूं, मुझसे नजर की हिफाजत नहीं होती, अब ना चाहते हुए भी मेरी नजर जो इधर उधर उठ जाती है, बेपर्दगी के मनाजिर देख लेता हूं। बुजुर्ग ने कहा कि मैं ये बात आपको समझा देता हूं, पहले मेरा एक काम करो, ये दूध का प्याला लो और फुला बुजुर्ग को दे आओ जो बाजार के दूसरे सिरे पर रहते हैं, लेकिन एक शर्त है कि दूध के प्याले से दूध बिल्कुल ना गिरे। नौजवान ने कहा कि कोई मसला नहीं है, बिल्कुल नहीं गिरेगा। उस बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा अगर ऐसा है तो मैं एक मजबूत आदमी तुम्हारे साथ कर दूंगा, अगर दूध का एक कतरा भी गिरा तो वो वहीं बाजार में तुम्हें दो जूते भी लगाएगा, मंजूर है? तो उसने कहा जी मंजूर है। अब नौजवान ने बड़ी एहतियात से दूध का प्याला लिया और दूध को गिराए बगैर वो प्याला बाजार के दूसरे कोने पर रहने वाले बुजुर्ग को दे आया। खुशी खुशी वापस आया और कहा कि हजरत मैंने वो प्याला पहुंचा दिया है, अब आप मुझे नजर की हिफाजत का तरीका समझाएं। तो बुजुर्ग ने पूछा दूध गिरा तो नहीं? तो उसने कहा नहीं हजरत बिल्कुल नहीं गिरा। तो पूछा कि अच्छा ये बताओ कि चलते जाते हुए कितनी शक्लों को देखा? तो नौजवान ने कहा कि एक भी नहीं, एक को भी नहीं देखा, कि इसलिए कि मेरा सारा ध्यान तो प्याले की तरफ था कि कहीं दूध ना गिर जाए, क्योंकि अगर दूध गिरता तो मुझे दो जूते लगते, बाजार में मेरी रुसवाई हो जाती, इसलिए मेरा किसी तरफ ध्यान नहीं गया। उन बुजुर्ग ने फरमाया कि यही अल्लाह वालों का हाल होता है कि वो हर वक्त अपने दिल के प्याले पर निगाह करते हैं और ऐसे उसे छलकने नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर गुनाह की वजह से प्याला छलक गया, नजर बहक गई, तो कयामत वाले दिन सबके सामने रुसवाई होगी। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ए मदनी चैनल के नाजरीन, ये रिवायत दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए। तस्वर कीजिए कि आज अगर हमारे छोटे भाई को, आज हमारे छोटे मदनी मुन्ने को अगर मां काजल लगाना चाहती है, वो इधर उधर भागता है, मां अपनी पैरों में पकड़कर उसको काजल की जैसे ही उंगली फिराती है, हम देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए वो हमारा भाई, वो हमारा मदनी मुन्ना जो है वो उछलता है, उसके आंखों में होने वाली चमक, उसकी आंखों में होने वाली तकलीफ उसे थोड़ी देर के लिए बेचैन कर देती है। सैयदना अल्लामा अबुल फरज अब्दुल रहमान बिन जौजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये कॉल दोबारा सुनिए कि औरत के महासिन यानी हुस्न व जमाल को देखना इबलीस के जहर में बुझे हुए तीरों में से एक तीर है, जिसने ना महरम से आंख की हिफाजत ना की, उसकी आंख में बरोज़े कयामत आग की सलाई फेरी जाएगी। तो अपने आप को जरा अपने बारे में गौर करें कि क्या मेरे अंदर कोई ऐसी ताकत है, मेरे अंदर क्या कोई ऐसा जोर है कि जो मैं मिलने वाले इन अदाब या मिलने वाली इन सजाओं से अपने आप को बचा सकूंगा? यकीनन नहीं, मैं तो बहुत कमजोर हूं। तो अपने रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह में गिड़गिड़ाइए, अपने आप को गुनाहों से बचाइए, कि आज का ये मुआशरा बिल्कुल दावत गुनाह बुला बुला कर दे रहा है। हमारे मोबाइल फोनों में मोबाइल की मुख्तलिफ पैकेजेस के जरिए गुनाह आम हो रहे हैं, लेकिन जहन बनाइए, ए दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, हम सबको पैकरे शर्म हया बनकर इंशाअल्लाह इस मुआशरे से भी गुनाहों से ना सिर्फ अपने आप को बचाना है, बल्कि इंशाअल्लाह हमारी इंफरादी कोशिश से हम इंशाअल्लाह दूसरे मुसलमानों को भी गुनाहों से बचाएंगे। क्या हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला हम सबको पैकरे शर्मो हया बनाए, अल्लाह हमें आंख का, जबान का, कान का, हाथ का, पांव का, हर उज्व का कुफले मदीना नसीब फरमाए। कि अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, दोज़ख की कहां ताब है कमजोर बदन में, दोज़ख की कहां ताब है कमजोर बदन में, हर उज्व का अत्तार लगा कुफले मदीना। ए काश हमें कुफले मदीना नसीब हो जाए। इस जिमन में मैं ये जरूर अर्ज करूंगा कि आप तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें, मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत की सीरत पर एक बड़ा प्यारा रिसाला लिखा गया है, मकतबतुल मदीना ने उसे शाया किया, तय करे शर्मो हया, या अमीर अहले सुन्नत की सीरत पर जो रिसाले लिखे जा रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे। जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि हया यही है कि बंदा गुनाहों से बचे ना, अब वो अमीर अहले सुन्नत की जो अंदाज है, जो आपकी सीरत के मुख्तलिफ पहलू उसमें बयान हुए, जैसे शुरू में भी मैंने वाकया बयान किया, वो उसी रिसाले से बयान किया था। इस रिसाले को हासिल कीजिए और इसके मुताबिक अमल करने की तरकीब बनाए। यानी एक वाकया उसमें लिखा है, अब अमीर अहले सुन्नत का अंदाज देखें, ऐसा मीठा मीठा अंदाज है जो शायद हमको किताबों में पढ़ने से नहीं मिलता है। अमीर अहले सुन्नत का एक मामूल है कि जब आप बैरून मुल्क तशरीफ ले जाते हैं तो अपने मकतब में लगी हुई घड़ी का सेल निकाल देते हैं। पूछा क्यों? तो कहा मैं नहीं हूं 10-12-15 दिन एक महीना, तो इस मकतब में कोई आके टाइम तो देखेगा नहीं, तो इस सेल को लगाकर रखना ये जिया है। आप सोचे तस्वुर करें यार, मैं बयान कर रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ये क्या चीज है यार, ये क्या सोच है। बहुत अवाइल में ये बात तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी सुनी थी अमीर अहले सुन्नत फैदान मदीना में। फैदान मदीना से अमीर अलसुन्नत घर तशरीफ ले गया। अच्छा, उस दौर में वो एक प्लास्टिक के चप्पल चलते थे जिसमें नीचे खाने बने होते थे। फैजान मदीना तामीर हो रहा था। अमीर अलसुन्नत फरमाते दूसरे दिन कि जब मैं आया तो जब मैं घर पहुंचा तो मेरा चप्पल जो था ना थोड़ा वजनी हो चुका था, तो मैंने उस चप्पल को उठाया तो उसके खानों में एक कंकर, मस्जिद की तामीरात का रोड़ी का जो कंकर होता है वो लगा हुआ था। तो मैं समझ गया कि चूंकि रास्ते में वो रोड़ी बिछी हुई थी तो चप्पल रखा होगा तो कंकर लग गया उसमें। तो अमीर से फरमाया कि मैंने उसको जेब में रख लिया, यार ये तो मस्जिद की तामीर का है कंकर। तो मैंने उस कंकर को लाकर दोबारा फैजान मदीना की रोड़ी में डाल दिया है। तो ये आप लोग भी यही चप्पल इस्तेमाल करते हो, अब इतने हजारों आते हैं, अगर एक एक कंकर ले जाओ तो हमारे तो कितने ट्रक खाली कर देते होंगे। मुझे याद है कि अमीर अहले सुन्नत की इस तरबियत के बाद इस्लामी भाइयों की एक तादाद होती थी जो गली के कोने पे जाके अपने चप्पल चेक करते थे कि यार कोई कंकर तो नहीं लगा हुआ। मकसद क्या समझाने का कि ये दावत इस्लामी का माहौल है कि मस्जिद का एक कंकर ये जाया ना हो, मेरी गफलत की वजह से जाया ना हो, तो अब इसका भी एहतियात। तो अब ऐसे बहुत सारे वाकयात अमीर अहले सुन्नत की सीरत के, फिर बुजुर्गों से निस्बत कि ये बुजुर्गों की फुला सीरत पर अमल, अहादीस मुबारका पर अमल। तो दावत इस्लामी का मदनी माहौल अगरचे हम हासिल करते हैं, जैसे बहुत सारे तलबाए किराम बैठे हैं दुनिया भर में सुन रहे हैं, लेकिन दावत इस्लामी क्या चाहती है, इसको अपनाने के लिए अमीर अहले सुन्नत की सीरत का मुताला करें। और सीरत का मुताला करने के लिए जो अल मदीनतुल इल्मिया ने एक सिलसिला जारी किया है, रिसाले सातवीं किस्त है शायद वो, तय करे शर्मो हया। आप अमीर अहले सुन्नत की सीरत पर ये देखें, आपको हैरानगी होगी कि यार क्या शख्सियत है। अल्लाह इनका साया सेहत व आफियत के साथ हम पर सलामत रखे। और जिस तरह ये चाहते हैं, ये दावत इस्लामी के से वाबस्ता हर आशिक रसूल को पैकरे शर्मो हया बनाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारी आंखें झुकी रहें, ये चाहते हैं कि हम किसी को जबान से तकलीफ ना दें, ये चाहते हैं कि हम अपने किसी अंदाज से भी तकलीफ ना दें। तो इंशाअल्लाह अगर ये अपनाएंगे आपको कल भी जहनी बहुत सुकून नसीब होगा, दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह, आखिरत में भी बरकतें मिलेंगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये नियत कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह रिसाला पैकर शर्मो हया इसका मुताला कर लेंगे। सब हाथ उठाकर जोरदार इंशाअल्लाह का नारा लगाएंगे, क्योंकि शैतान नहीं चाहेगा कि हम शर्मो हया के पेकर बन जाएं। ये तो मुसलमानों के ना गैरत के जनाजे निकाले हुए, लेकिन हम ने नारा लगाया है। क्या नारा लगाया है कि शैतान के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग, गीबत के खिलाफ जंग। ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे, मोहब्बतों के चोर कुफले मदीना इंशाअल्लाह। सर पे इमामा, रुख पे दाढ़ी, सर पर जुल्फे, अक्सर नजरें हया से नजरें इंशाअल्लाह। मस्जिद पर तहरीक इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।